नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। CCNA 200, 300, वन ऑफिशियल सर्ट गाइड, वॉल्यूम 2, सिस्को नेटवर्किंग की एसोसिएट स्तर की प्रमाणन परीक्षा के लिए बनाया गया आधिकारिक अध्ययन ग्रंथ है। वेंडल ओडम के नेतृत्व में तैयार यह दूसरा संस्करण केवल सिद्धांत समझाने वाली पुस्तक नहीं है, बल्कि परीक्षा उन्मुख पुनरावृत्ति, प्रश्न अभ्यास और कॉन्फ़िगरेशन अभ्यास को एक ही अध्ययन प्रक्रिया में जोड़ता है। यह वॉल्यूम 1 के साथ मिलकर CCNA परीक्षा के पूरे दायरे को कवर करता है, जबकि इसका विशेष जोर वायरलेस लैन, आईपी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सुरक्षा सेवाओं, आईपी सेवाओं, नेटवर्क आर्किटेक्चर और नेटवर्क ऑटोमेशन जैसे विषयों पर है। पुस्तक की संरचना पाठक को पहले अपनी वर्तमान समझ जांचने, फिर आवश्यक अवधारणाओं का अध्ययन करने और अंत में प्रश्नों तथा लैब के जरिए कमियां पहचानने में मदद करती है। इसलिए इसका उद्देश्य केवल परिभाषाएं याद कराना नहीं, बल्कि परीक्षा में पूछे जाने वाले नेटवर्क व्यवहार, कॉन्फ़िगरेशन विकल्पों और डिजाइन संबंधी निर्णयों को व्यवस्थित ढंग से समझाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, वायरलेस लैन में कंट्रोलर आधारित संचालन और रेडियो व्यवहार। पुस्तक वायरलेस लैन को केवल केबल रहित इथरनेट का विकल्प मानने के बजाय साझा रेडियो माध्यम वाले नेटवर्क के रूप में रखती है। इस अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि वायरलेस क्लाइंट एक ही रेडियो स्पेक्ट्रम में प्रतिस्पर्धा करते हैं और कवरेज, चैनल चयन, हस्तक्षेप तथा सुरक्षा सीधे उपयोगकर्ता अनुभव को प्रभावित करते हैं। अध्ययन का केंद्र वायरलेस लैन कंट्रोलर और एक्सेस पॉइंट के संबंध पर है। कंट्रोलर आधारित मॉडल में कई एक्सेस पॉइंट्स की नीतियां, क्लाइंट पहुंच और संचालन केंद्रीय रूप से प्रबंधित किए जा सकते हैं। इससे बड़े संगठन में हर एक्सेस पॉइंट को अलग से कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता घटती है, लेकिन नियंत्रण और डेटा प्रवाह के तर्क को समझना आवश्यक हो जाता है। पुस्तक वायरलेस नेटवर्क के घटकों, वायरलेस सुरक्षा के मूल विचारों और सामान्य संचालन सिद्धांतों को परीक्षा के संदर्भ में जोड़ती है। पाठक को यह पहचानना सीखना होता है कि सर्विस सेट, आइडेंटिफायर, प्रमाणीकरण, एन्क्रिप्शन और रेडियो सेटिंग्स किस प्रकार जुड़े हैं। इस हिस्से की व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि उम्मीदवार समस्या को केवल आईपी कनेक्टिविटी की त्रुटि नहीं मानता, वह रेडियो पहुंच, क्लाइंट संबद्धता, नीतियों और केंद्रीय प्रबंधन जैसे संभावित कारणों में अंतर कर पाता है। इस तरह वायरलेस विषय नेटवर्क, एडमिनिस्ट्रेशन और परीक्षा प्रश्नों दोनों के लिए ठोस आधार देता है। दूसरा, आईपी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से ट्रैफिक को सटीक रूप से नियंत्रित करना। आईपी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या ACL पैकेट फिल्टरिंग की ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियमों की क्रमबद्ध सूची के आधार पर ट्रैफिक को अनुमति या अस्वीकृति दी जाती है। पुस्तक में इसका महत्व केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ACL नेटवर्क नीति लागू करने, प्रबंधन पहुंच सीमित करने और कुछ सेवाओं या स्रोतों के ट्रैफिक को नियंत्रित करने का आधार भी है। इसका केंद्रीय तर्क नियमों के क्रम में है। राउटर या स्विच सूची को ऊपर से नीचे पढ़ता है और पहला मेल खाने वाला नियम लागू करता है। इसलिए सही नियम भी गलत स्थान पर होने पर अपेक्षित परिणाम नहीं देगा। स्रोत और गंतव्य आईपी पते, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर और वाइल्ड कार्ड मास्क जैसे तत्वों को साथ पढ़ना पड़ता है। पुस्तक मानक और विस्तारित ACL के अंतर को भी परीक्षा की जरूरत के अनुरूप रखती है। मानक सूची मुख्यतः स्रोत पते के आधार पर निर्णय लेती है, जबकि विस्तारित सूची अधिक बारीक नियंत्रण देती है। एक अहम व्यावहारिक बिंदु अंतर्निहित अस्वीकृति है। यदि किसी पैकेट के लिए अनुमति नियम नहीं मिलता तो वह अस्वीकार हो सकता है। अतः ACL लिखना केवल निषेध नियम जोड़ना नहीं, बल्कि इच्छित वैध ट्रैफिक के लिए स्पष्ट अनुमति सुनिश्चित करना भी है। इन सिद्धांतों के साथ इंटरफेस और उचित दिशा पर ACL लागू करने की समझ बनती है, जो कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग दोनों में निर्णायक है। तीसरा, नेटवर्क सुरक्षा सेवाओं में पहुंच, परतों और जोखिम का संबंध। सुरक्षा संबंधी भाग नेटवर्क को किसी एक कमांड से सुरक्षित करने का दावा नहीं करता, इसके बजाय यह दिखाता है कि अलग अलग सुरक्षा नियंत्रण अलग स्तर के जोखिमों को घटाते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ट्रैफिक को छान सकती है, सुरक्षित रिमोट प्रबंधन अनधिकृत प्रशासनिक पहुंच घटाता है, और लेयर टू सुरक्षा विशेषताएं स्विचिंग वातावरण में होने वाले कुछ हमलों या गलत व्यवहार को सीमित कर सकती हैं। इस दृष्टि से पुस्तक का उपयोगी संदेश यह है कि नेटवर्क सुरक्षा को केवल इंटरनेट किनारे के फायरवॉल तक सीमित नहीं करना चाहिए। स्विचपोर्ट, प्रबंधन प्लेन, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और ट्रैफिक नीति सभी सुरक्षा सतह है। उम्मीदवार को यह भी समझना पड़ता है कि गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती। उदाहरण के लिए, किसी सेवा तक पहुंच रोकना उपलब्धता पर असर डाल सकता है, जबकि एन्क्रिप्शन मुख्यतः गोपनीयता की रक्षा करता है। सही उपाय चुनने के लिए समस्या और नियंत्रण के संबंध को पहचानना जरूरी है। पुस्तक परीक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा सेवाओं और उनके संचालन के मूल सिद्धांतों को नेटवर्क संदर्भ में संगठित करती है। इसका लाभ यह है कि पाठक अलग अलग फीचरों को याद करने के बजाय यह सोच विकसित करता है कि कौन सा नियंत्रण किस स्थान पर लागू होगा, कौन सा ट्रैफिक प्रभावित होगा और गलत कॉन्फ़िगरेशन से वैध उपयोगकर्ताओं पर क्या असर पड़ सकता है। यही समझ वास्तविक नेटवर्क परिवर्तन को अधिक सावधान और जांच योग्य बनाती है। चौथा, आईपी सेवाओं को नेटवर्क की दैनिक कार्यक्षमता के आधार के रूप में समझना। नेटवर्क में केवल रूटिंग होने से उपयोगकर्ता सेवा पूरी नहीं होती। उपकरणों को सही समय चाहिए, नामों को आईपी पतों में बदलना होता है, पते स्वचालित रूप से मिल सकते हैं और प्रबंधन ट्रैफिक को अलग नीति की जरूरत हो सकती है। पुस्तक आईपी सेवाओं को इसी दैनिक संचालन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जैसे तंत्र क्लाइंट को आईपी पता और संबंधित नेटवर्क पैरामीटर देने में सहायक होते हैं। डोमेन नेम सिस्टम नाम आधारित उपयोग को संभव बनाता है, क्योंकि उपयोगकर्ता और कई अनुप्रयोग सीधे संख्यात्मक पते याद रखकर काम नहीं करते। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल लॉग निगरानी और सुरक्षा घटनाओं में समय की संगति का महत्व दिखाता है। इन सेवाओं में परीक्षा का कठिन भाग अक्सर शब्दावली नहीं बल्कि संदेशों, भूमिकाओं और निर्भरताओं के बीच संबंध होता है। उदाहरण के लिए, क्लाइंट के पास आईपी पता होने पर भी नाम समाधान विफल हो सकता है और समय असंगति से प्रमाण पत्र या लॉग विश्लेषण जटिल बन सकता है। पुस्तक इस प्रकार की अलग समस्याओं को अलग सेवा स्तर पर पहचानने की तैयारी कराती है। कॉन्फ़िगरेशन अभ्यास का महत्व भी यहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि सेवा सक्षम करने के बाद सत्यापन आवश्यक है। उम्मीदवार को यह समझना होता है कि सेवा किस उपकरण पर चल रही है, उसे कौन उपयोग कर रहा है और विफलता की स्थिति में किस परत या सेटिंग की जांच पहले करनी चाहिए। यह भाग नेटवर्क को एक उपयोगी प्रबंधनीय सेवा मंच के रूप में देखने की आदत बनाता है। अंत में, नेटवर्क आर्किटेक्चर और ऑटोमेशन में नियंत्रण, एपीआई और डेटा प्रारूप। पुस्तक का नेटवर्क आर्किटेक्चर और ऑटोमेशन भाग पारंपरिक कमांड लाइन प्रशासन से आगे की दिशा समझाता है। आधुनिक नेटवर्क में नियंत्रण कार्य डेटा फॉरवर्डिंग और प्रबंधन के तरीके एक ही उपकरण केंद्रित मॉडल तक सीमित नहीं है। नियंत्रक आधारित डिजाइन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के विचार इस बदलाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य हर नेटवर्क समस्या को जादुई ढंग से हल करना नहीं, बल्कि नीतियों, कॉन्फ़िगरेशन और दृश्यता को अधिक केंद्रीकृत तथा प्रोग्राम योग्य बनाना है। ऑटोमेशन के संदर्भ में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस महत्वपूर्ण है। एपीआई के जरिए सॉफ्टवेयर नेटवर्क उपकरणों या नियंत्रकों से संरचित तरीके से जानकारी ले सकता है और बदलाव भेज सकता है। पुस्तक डेटा प्रतिनिधित्व के लिए जेसन और एक्सएमएल जैसे प्रारूपों तथा अनुरोध आधारित संवाद के मूल विचारों से परिचित कराती है। परीक्षा के लिए यह जानना जरूरी है कि ऑटोमेशन का अर्थ केवल स्क्रिप्ट लिखना नहीं है। इसमें यह पहचानना भी शामिल है कि कौन सी प्रणाली जानकारी का स्रोत है, कौन सा इंटरफेस उपलब्ध है और डेटा किस संरचना में आदान प्रदान हो रहा है। व्यावहारिक रूप से ऑटोमेशन दोहराए जाने वाले कार्यों में एकरूपता बढ़ा सकता है, लेकिन गलत टेम्पलेट या गलत नीति का प्रभाव भी बड़े पैमाने पर फैल सकता है। इसलिए पुस्तक ऑटोमेशन को संचालन अनुशासन, सत्यापन और नियंत्रित बदलाव की आवश्यकता के साथ रखती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो CCNA 203-101 परीक्षा की तैयारी को केवल वीडियो देखने या प्रश्न याद करने तक सीमित नहीं रखना चाहते। विशेष रूप से नेटवर्क सहायता भूमिका में काम करने वाले शुरुआती नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्को आधारित वातावरण में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थी और व्यवस्थित स्वाध्याय पसंद करने वाले उम्मीदवार इससे लाभ ले सकते हैं। वॉल्यूम 2 को वॉल्यूम 1 के साथ पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि दोनों मिलकर परीक्षा के विषयों का पूरा दायरा बनाते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ इसकी बहुस्तरीय अध्ययन व्यवस्था में है। शुरुआती आकलन से समय का बेहतर उपयोग होता है कि टॉपिक तालिकाएं पुनरावृत्ति का ढांचा देती हैं और अभ्यास प्रश्न तथा सिमुलेटर वैचारिक ज्ञान को परीक्षा और कमांड लाइन संदर्भ में जांचने का अवसर देते हैं। यह संयोजन उन सामान्य गाइडों से इसे अलग करता है जो या तो अत्यधिक संक्षिप्त नोट्स देते हैं या केवल प्रश्न बैंक पर निर्भर रहते हैं। आधिकारिक सिस्को स्वीकृति इसकी परीक्षा संगति को विशेष महत्व देती है। हालांकि कोई भी गाइड वास्तविक अभ्यास का विकल्प नहीं है। पाठक को लैब दोहरानी चाहिए, गलत उत्तरों के कारण समझने चाहिए और परीक्षा ब्लूप्रिंट में होने वाले परिवर्तनों की जांच करनी चाहिए। इसकी मुख्य विशेषता विषयों की व्यापक सूची नहीं बल्कि समझ, स्व मूल्यांकन, कॉन्फ़िगरेशन अभ्यास और लक्षित पुनरावृत्ति को एक अनुशासित प्रक्रिया में जोड़ना है। इसलिए यह परीक्षा पास करने के साथ साथ नेटवर्क के दैनिक संचालन को समझने के लिए भी उपयोगी संदर्भ बन सकती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं वेंडल ओडम, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।